नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने अपनी जीवन की कठिनाइयों को पार कर अपने लिए तो रास्ता बनाया ही है, लेकिन आज वो कई लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। डॉक्टर हिना सिन्हा को हाल ही में मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रोवाइडर ऑफ NDIS अकोमोडेशंस इन ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से नवाजा गया है और इस साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और सफर की दास्तां SBS हिंदी से बांटी है। एक महिला, एक पत्नी, एक माँ, एक इमिग्रेंट और एक COO होना हिना के लिए कैसा रहा है, आइए जानते हैं।
हिना, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच भव्या।
तो हिना, आपसे हमें आज खूब सारी बातें करनी है और आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहेगी बहुत लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आई और ये जो सफर है इसकी शुरुआत कैसे हुई?
मैं ऑस्ट्रेलिया में 2015 में आई थी अपना मास्टर्स करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया आने का रीजन एक ये भी था क्योंकि मैंने बचपन में चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज झेला है अपने परिवार में ही, और जो काफी दुख भरा और ट्रॉमेटिक इवेंट था। और मुझे उन चीजों से बाहर निकल के एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई जगह पे जाना था जहाँ पे मैं अपने सपनों को सच कर सकूं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए उन पे काम कर सकूं। तो तब मैं ऑस्ट्रेलिया आई 2015 में। मैंने 2017 में अपना कॉलेज ग्रेजुएशन खत्म किया। तब तक मैं काफी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही थी जो रेफ्यूजी कम्युनिटीज हैं, जो इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ एंड वेलबींग के प्रोग्राम्स में। शॉर्ट में बताने के लिए कि जो जर्नी है ऑस्ट्रेलिया में मेरी वो बिल्कुल आम है जैसे सब लोगों की होती है। मैंने शुरुआत रेस्टोरेंट में वेटरसिंग का काम करके चालू किया था। मैंने डोर टू डोर नॉकिंग किया है एनर्जी कंपनीज के लिए, रिटेल में काम किया है। हर एक स्टेप के पहले मुझे ये पता था कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है या मेरे नेक्स्ट 5 स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इस मेरी जर्नी में कि एक क्लियर विजन था मेरे पास कि मुझे कहाँ पहुंचना है, जो कि कई बार लोग भूल जाते हैं जब वो छोटी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। पर मेरे लिए हमेशा ये सबसे चीज इम्पोर्टेंट रही थी कि मेरे दिमाग में एक विजन क्लियर था कि मुझे कहाँ रहना है, क्या बनना है और किन लोगों को की मदद करनी है।
जी, तो है ना, आपने जैसा कि अभी बताया कि आपने भी शुरुआत वैसे ही की थी जैसे ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन करीब 4 साल बाद अब आप बिल्कुल एक अलग चीज कर रही हैं जिसके लिए आपको हाल ही में एक अवार्ड भी दिया गया है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने इस वेंचर के बारे में बताएं जिसका नाम है माय सेकेंड होम। ये है क्या?
बिल्कुल, माय सेकेंड होम एक NDIS के अंदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो जिन लोगों को विकलांगता या डिसेबिलिटीज होती हैं जिनकी वजह से वो कम्युनिटी में ये अपने समाज में अच्छे से मिल नहीं पाते, अपनी लाइफ के गोल्स अचीव नहीं कर पाते, उन लोगों की हेल्प करने के लिए माय सेकेंड होम उनको हाउसिंग सर्विसेज और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर वो ट्रांजिशन के लिए हो कि वो हॉस्पिटल से अब अपने घर में मूव होना चाह रहे हैं, और या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो कि वो हमेशा के लिए ऐसा घर और सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें अपने लाइफ में। तो माय सेकेंड होम हाउसिंग प्रोवाइड करती है डिजेबल लोगों को NDIS फंडिंग के साथ, और इसी के लिए हमें एनेबलमेंट अवार्ड्स 2024 मिला है ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाउसिंग सर्विसेज इन द NDIS सेक्टर, जिसका श्रेय मैं पूरे टीम को देना चाहूंगी अपने, क्योंकि एक कंपनी की स्ट्रेंथ उसके टीम में होती है और मेरे टीम ने मेहनत हर दिन 200% की है इस अवार्ड को पाने के लिए।
तो है ना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड के लिए। साथ ही हमें पता चला है कि आप एक और अवार्ड कैटेगरी में फाइनलिस्ट हैं, और ये जो अवार्ड है ये काफी खास भी होगा क्योंकि ऑस मॉमप्रेनर जो राइजिंग स्टार कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया है उसके बारे में जानना चाहूंगी। और साथ ही आप दो प्यारे बच्चों की माँ भी हैं, तो फिर इस हिसाब से ये अवार्ड और भी ज्यादा खास हो जाता है, तो उस बारे में हमें कुछ बताएं।
बिल्कुल, ऑज ममप्रेनोर अवार्ड के राइजिंग स्टार के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया और मैं फाइनलिस्ट हूँ। ये स्पेशल इसलिए है, मेरे बच्चों के लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि उनकी माँ अपने करियर और प्रोफेशन में वो हाइट्स पे पहुंच रही है, जिससे उनको भी लीडरशिप के बारे में पता चलता है। वो मेरे मेरे साथ कई बार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने आते हैं, या उन्हें पता होता है कि मम्मी ये कर रही है, या मम्मी की ये कंपनी है, मम्मी बॉस लेडी है। तो इससे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा ये अवार्ड कैटेगरी में फाइनलिस्ट होने के लिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज मैं ये अवार्ड्स के थ्रू कम्युनिटी में या अपने समाज में ये कहना चाहती हूँ कि कई सारी महिलाएं, लगभग 57% महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चे होने के 1 से 2 साल के अंदर अपना जॉब छोड़ देती हैं या काम छोड़ देती हैं और अपने करियर को एक फुल स्टॉप लगा देती हैं। ये अवार्ड के जरिए मैं बाकी महिलाओं को जो ये सोच रही हैं कि बच्चा होने के बाद मेरा करियर खत्म हो जाएगा, उनको इंस्पायर करना चाह रही हूँ कि बच्चा होने के बाद करियर खत्म नहीं होता। शायद कठिनाइयां थोड़ी अलग होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो पाथ पे चलना छोड़ दें।
जी बिल्कुल। ही ना, एक बात ये भी होती है कि क्योंकि हम इस आइडिया को कहीं ना कहीं पचा नहीं पाते हैं कि एक जो महिला है वो अपनी घर गृहस्थी और काम दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ सकती है, संभाल सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि खूब सारी कठिनाइयां भी आती हैं, तो क्या आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में इस तरह की कोई कठिनाई रही है जहां आपको लगा हो कि क्या मेरा निर्णय सही है?
बिल्कुल, इस सवाल का जवाब देने के लिए एक छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहूंगी मैं।
जी
जब मैं अपनी पहली बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मुझे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने फायर कर दिया था, क्योंकि मैंने उनसे ये एडजस्टमेंट मांगी थी कि मैं 3 दिन ऑफिस से काम कर लूं और 2 दिन घर से काम कर लूं। और हमें लगता है कि एक बार आपको ऑफिस जॉब मिल गई, आप एक पोजीशन पे आ गए, तो फिर अब आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, और फिर हम वहां से आगे सोचना बंद कर देते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं जो चीज है हमारे पास उसमें। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेकअप कॉल था ये, जब मुझे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मुझे फायर किया था, जब मैं 3 हफ्ते बाद हॉस्पिटल जाने वाली थी अपने डिलीवरी के लिए। और
जी
वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर शायद उन्होंने मुझे नहीं फायर किया होता और उन्होंने मुझे इस हालत में नहीं छोड़ा होता कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद मैं बिजनेस के सेक्टर में घुसती ही नहीं, मैं कभी अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन खोलती ही नहीं, और मैं हमेशा वो 9 to 5 के जॉब में ही रहती। तो पर्सनल लेवल पे कठिनाई डेफिनेटली ये थी पहली, कि जब मेरी जॉब चली गई थी मेरे प्रेगनेंसी के वक्त। दूसरी ये कठिनाई जो अक्सर काफी महिलाएं रिलेट कर सकती हैं इस चीज से, कि दूसरे लोगों की राय आपके बारे में, आप कैसी माँ हैं, आपके बच्चे चाइल्ड केयर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, आप उनको फॉर्मूला पिला रही हैं या आप उनको ब्रेस्ट मिल्क पिला रही हैं, दूसरे लोगों की राय को लेके अक्सर महिलाएं अपने सपनों को कमरे में बंद करके रख देती हैं, ताला लगा देती हैं, और चाबी कहाँ है ये भी भूल जाती हैं। पर मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि कठिनाइयां सिर्फ आपको स्ट्रांग करती हैं, आपको निडर बनाती हैं, और आपको मोटिवेट करती हैं कि आप और चीजें ऐसी करें जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कर सकते हैं। अगर कठिनाइयां होंगी ही नहीं, तो हमें शायद कभी हमारे स्ट्रेंथ्स पता ही नहीं चलेंगे, क्योंकि हम फिर कंफर्टेबल रहेंगे जो है उसमें।
दोस्तों, इस बातचीत का दूसरा भाग हम आप तक जल्द लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें SBS हिंदी के साथ। तो दोस्तों हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर हिना सिन्हा के साथ, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रोवाइडर ऑफ एनडीआईएस अकोमोडेशन के सम्मान से नवाजा गया है। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं और सुनते हैं इस साक्षात्कार का दूसरा भाग।
है ना, आपने इंटरव्यू के शुरुआत में ये बात बताई थी कि आप चाइल्डहुड अब्यूज से भी गुजरी हैं, तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये पूछना चाहूंगी कि आज आप एक ऐसा काम कर रही हैं, ऐसे क्षेत्र में काम कर रही हैं जिसमें बहुत कंपैशन की जरूरत होती है, तो क्या आप मानेंगी कि कहीं ना कहीं जो वो एक दर्द है उसको आपने इस्तेमाल करके एज अ टूल यूज किया है और स्ट्रॉन्ग होने के लिए? क्योंकि ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो या तो इस चीज के बारे में बात नहीं करती हैं, या फिर लाइफ में, जिंदगी में ऐसे क्षेत्र में काम ही नहीं करती हैं जहां बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, क्योंकि जो इम्प्रेशन उन पे छूट जाता है वो जिंदगी भर के लिए रह जाता है।
जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज से मैं गुजरी हूँ, उसकी वजह से मुझे एक क्वालिटी मेरे अंदर है जो मुझे पता चली है, रेजिलियंस जो बोलते हैं हम, कि आप कैसे स्ट्रेस में डील करते हैं। जब आपने अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया है स्ट्रेस डीलिंग में, तो फिर आपको छोटे मोटे पहाड़ पे ट्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने डेफिनेटली अपने दर्द को चैनलाइज किया है अपने पैशन की तरफ, जो है कि कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करना, जो वल्नरेबल लोग हैं, जो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन लोगों की हेल्प करना। तो यस, ये बिल्कुल सही है कि मेरे दर्द ने मुझे ऐसा बनाया है, ये कैपेसिटी दी है कि मैं इन एरियाज में काम कर सकूं।
जी, तो है ना, आप 2015 में ऑस्ट्रेलिया आई थी और अब लगभग 10 साल हो जाएंगे। अब जब आप पीछे मुड़कर अपने इस सफर को देखती हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं?
ये बिल्कुल सही है कि 10 साल हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि टाइम बहुत जल्दी निकला है, क्योंकि टाइम जल्दी नहीं निकला है। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जैसे हर हर इंटरनेशनल स्टूडेंट करता है जब वो पहले यहाँ पे आते हैं। पर मुझे ये, अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सारे जो मुश्किल हैं, ये इनके डॉट्स को कनेक्ट कर पा रही हूँ, कि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। अगर मेरे साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ होता, तो शायद मुझ में इतनी रेजिलियंस नहीं होती कि मैं अपने लाइफ के डिफिकल्टीज को चैलेंज कर सकूं। अगर अगर मुझे जॉब से फायर नहीं किया गया होता, तो शायद मैं अपना कभी बिजनेस खोलने का नहीं सोचती। अगर मैंने लोगों की राय को अपने आप पे इम्पैक्ट होने दिया होता कि तू बहुत ज्यादा बोलती है, तू बहुत मुफ्फट है, तुझे जो भी तेरे मुंह में आता है तो वो बोलती है, तेरे को किसी के कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं लगता, तो ये सारी चीजें जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बताई गई थी कि ये मेरी वीकनेसेस हैं, एक्चुअली वो ही मेरी स्ट्रेंथ्स बन के बाहर निकली हैं। हम वो डॉट्स तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि जब हम उस
जी
सिचुएशन में होते हैं तब हम नहीं देख पाते हैं कि कोई प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उससे बाहर भी दुनिया है, उससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। तो मैं बेहद गर्व महसूस होता है अपनी जर्नी को देख के, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे कहानी के जरिए मैं बाकी लोग, बाकी महिलाएं जो ये सोच रही हैं और डाउट कर रही हैं अपने आप को कि वो क्या अचीव कर सकती हैं, उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं, आप कुछ भी बन सकती हैं, आप सीईओ बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सक अगर आपको भूख है उसकी, आप भूखे हैं उसके लिए, तो आप कुछ भी बन सकते हैं।
जी, तो है ना, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जिसका जवाब शायद आपने दे भी दिया है, लेकिन फिर भी, कि इस अंश के माध्यम से आज खूब सारी महिलाएं हमें सुन रही होंगी जो अपने जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर हैं। काफी महिलाएं ऐसी होंगी जो कुछ कर रही हैं, काफी ऐसी होंगी जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और कुछ ना कुछ उन्हें पीछे खींच लेता है। तो ऐसे में आपने अपने जीवन से ऐसे कोई 3 लेसन्स जो सीखे हो या जो आपकी सीख रही है, वो आप इन महिलाओं से बांटें।
बिल्कुल, इवन आज ऑस्ट्रेलिया में 10 में से 1 बच्चा ऐसा है जिसके साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज होता है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लोगों पे जब उनके साथ ये होता है। और उस सीख से यही बोलना चाहूंगी कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी मुश्किलों को पंख में बदल देंगे तो आप ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं। और दूसरी जो सीख है, जो मैंने सीखी है, कि कभी भी कंफर्टेबल मत होइए जिसमें आप अभी हैं। हमेशा ये सोचिए कि आप 1% बेटर कैसे बन सकते हैं कल, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो अभी पर्सनल लाइफ में है। आप 1% बेटर हर दिन अगर बनेंगे तो आप ओवरऑल अपने लाइफ को और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाता तो शायद मैं अपने सपनों के पीछे नहीं भाग पाती, मैं अपने सपनों को नहीं सच कर पाती अगर मैं उस कंफर्ट जोन में ही रहती तो। और तीसरी जो बात है, जो सीख है, जो मैंने सीखी है, वो ये है कि दूसरों की राय से प्लीज प्रभावित ना हो, क्योंकि लोग हमेशा राय देने के वक्त आपके साथ आएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, पर जब मुश्किलें आएंगी या फिर जब आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहे होंगे तो वो ये भी ट्राई करेंगे कि शायद आप ना करें प्रोग्रेस अपने करियर में। और स्पेशली इंडियन वुमेन में मैंने ये देखा है कि हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें बिताते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं अब यही बोलना चाहूंगी कि अगर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो भी अगर हम सोचने लगे तो वो क्या करेंगे। तो लोगों
जी
की राय से प्रभावित ना हो, सुने, कंसल्ट करें, अपने फैमिली से कंसल्ट करें, फ्रेंड्स से कंसल्ट करें, उनसे उनसे उनकी राय पूछें, पर जो चीज आपके दिल में है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर वो राय आपको उस गोल, उस पाथ से दूर ले जा रही है तो प्लीज उसको डिसरिगार्ड करें और अपने अपने गोल्स की तरफ, अपने ऊंचाइयों की तरफ चलते रहें।
जी तो है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और एक बार फिर से SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए भव्या। मैं एक और चीज बताना चाहूंगी जो अभी
जी
अभी थोड़े घंटों पहले ही हुई है इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट।
जी
मुझे डेमोक्रेसी फर्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने इनवाइट किया है मेंजीज में फेडरल कैंडिडेट बनने के लिए, जो मैंने एक्सेप्ट किया है।
अरे वाह,
तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद जो महिलाएं सुन रही हैं अभी, वो ये सोच सकें कि एक बच्ची जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज से गुजरी है, सब कुछ छोड़ के नए कंट्री में आके स्ट्रगल की है, खुद का बिजनेस बनाया है, आज 2 बच्चे हैं, फैमिली है, वारंट डाइट जैसे एरिया में रह रही हूँ, तो अगर मैं ये कर सकती हूँ और मैं लड़ सकती हूँ अपने राइट्स के लिए, अपने कम्युनिटी के राइट्स के लिए, तो आप भी कर सकती हैं।
SBS न्यूज़ के लिए इस खबर को आप सबके सामने लेकर आई भव्या पांडे।